देवियों सज्जनों, आज कोइंसिडेंटली बड़ा सौभाग्य है कि आज ही हम दीपावली है। जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, खास करके यूएसए में, तो हमारे लिए सारे त्योहार सैटरडे और संडे को मनाना होता है, त्योहार कभी भी हो। कभी कभी सौभाग्य से हमें सैटरडे संडे को ही वो फेस्टिवल आता है, तो आज ही दिवाली है और बड़ा सौभाग्य कि हम आज दिवाली के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है इसी दिवाली के अवसर पर। दिवाली जो इसका नाम है दीपावली, इसका हिंदी में दिवाली शब्द बना। इसका लिटरेरी मीनिंग होता है रो ऑफ लैंप्स, बहुत सारे दियाओं का एक लाइन बन जाए तो उसको कहते हैं दीपावली। तो नेचुरली इसका मतलब है कि ये दियों का पर्व है। दिया मतलब लाइट का, प्रकाश का पर्व है। और ये प्रकाश का पर्व कब होता है? जब बिल्कुल अंधेरा होता है। उसका डेट क्या होता है? अमावस्या में। अमावस्या जिस दिन मूनलेस होता है, जिन्हें रात को चांद नहीं होता है, बिल्कुल डार्क होता है, कार्तिक मास के अमावस्या में होती है। तो दिया का जो यूज है वो दिन में तो हो ही नहीं सकता। अब डे टाइम में इतना बड़ा दिया, सूरज जलता है, तो आपको दिए की क्या महत्व है? तो दिए का महत्व तो अंधेरे में ही होता है, जहां दूसरा बड़ा लाइट नहीं होता है। ये दीपावली का मेन भाव है। जीवन में जो अंधेरा है, तो मेटाफोरिकली जो भी खराब चीजें हैं, सब को डार्कनेस जो है, अंधेरा है, वो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पुराणों में जो राक्षसों की आप कहानी पढ़ते हैं, उनको सब काला दिखाया गया, ब्लैक, डार्क। जरूरी नहीं कि वो कोई कलर से ब्लैक हो, ये इमेजिनेशन है। कनेक्ट करने का जो भी बुरी चीजें हैं वो डार्क से जुड़ता है, जो अच्छी चीजें हैं वो लाइट से जुड़ता है। तो हमारे अंदर जो इग्नोरेंस है वो भी डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है। जो आपके ज्ञान है वो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो आप प्रार्थना करते हैं रेगुलर, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय, मुझे असत से, जो फल्स है, फलसूट, उसे रियलिटी की ओर ले चलो हे प्रभु, और मुझे डार्कनेस से लाइट की ओर ले चलो प्रभु, मृत्यु से, डेथ से, इमोर्टलिटी की ओर ले चलो। ये तीनों सिनोनिमस होते हैं, डार्कनेस, इग्नोरेंस, फॉल्सहुड, डेथ, ये एक ही सिनोनिम होते हैं। अब इसी तरह ज्ञान, अमृतत्व, अमरत्व, प्रकाश, ये सब सिनोनिम होते हैं। तो जितना जीवन में हम उजाला लाएं अपने और दूसरों के जीवन में, उतना हम आगे बढ़ते हैं। देवियों सज्जनों, सूरज तो ईश्वर की प्रकृति का देन है। जैसे परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ दे रखा है, पर सबको सब मिलता नहीं है। कोई बहुत धनी है, बहुत गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, क्योंकि सबकी फिर अपनी एबिलिटी है, कौन कितना बाजार से चीजें ला सकता है। इसी तरह सूरज की रोशनी सबको मिलती है, पर जब रात होता है तो रोशनी की जरूरत पड़ती है, तो दिया आपको हेल्प करता है। पूरे सूरज की तरह तो नहीं, पर आपकी लाइफ में जहां जहां जरूरत पड़ती है तो दिए का प्रकाश आपको हेल्प करता है। दीपावली उसी पर्व का, त्योहार का नाम है, जहां हम अपने अंदर भी दिए तो जलाएं, पर दूसरों के लाइफ में जहां कोई सनलाइट नहीं पहुंचता, जो डार्कनेस में है, इग्नोरेंस में है, डेथ में है, परेशानी में है, नीड में है, उनको अगर हम दिया बन के थोड़ा हेल्प कर सकें, उनकी नीड में काम आ सके, तो फिर हम दूसरों के वहां भी दिवाली मना लेते हैं। ये दिवाली फेस्टिवल शुरू कैसे हुई हमारे इंडियन ट्रेडिशन में या हिंदू ट्रेडिशन में? बेसिकली हम ये एक एंशियंट कल्चर है, दुनिया के जहां भी कोई एंशियंट सिविलाइजेशन है तो उस सिविलाइजेशन में जो भी पहला घर में खाना आता है, हार्वेस्ट आता है, ग्रेन आता है, वो पहले ईश्वर को ऑफर किया जाता है, प्रभु को दिया जाता है। यहीं से कल्चर शुरू होता है। तो हमारे यहां जो यज्ञ का ट्रेडिशन है तो उसमें दो यज्ञ ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नवशश्येष्टि, द यज्ञ बेस्ड ऑन द न्यू हार्वेस्ट। जब भी हार्वेस्टिंग होता है, पहली बार घर में, बैकयार्ड में या यार्ड में आपके फसल आता है, वो फसल का जो पहला जो भोग है वो ईश्वर को सौंपा जाता है। तो प्राचीन काल में उसके लिए यज्ञ के द्वारा दिया जाता था, हवन में आहुति के रूप में घर में पकाया हुआ वो चावल या आटे से या चावल से या जिससे भी बना हुआ चीज, उससे आहुतियां दी जाती थी। अग्नि में आहुति दी जाती थी, परमात्मा के लिए दी जाती थी कि ये जो तुम्हारे कृपा में मेरे घर में जो फसल आया है वो तुम्हें ही सौंपता हूं, तुम्हारा प्रसाद समझ के साल भर में भोगूंगा। आज भी आपके घर में कोई अच्छी चीज होती है, पहली बार होती है, आप सेलिब्रेट करते हैं, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने वेल विशर में, फैमिली में आप सेलिब्रेट करते हैं। आपकी बैकयार्ड में कोई सब्जी आती है, कोई फ्रूट आता है, आप किसी नेबरहुड में या किसी को या आसपास के मंदिर में या जिससे आपकी श्रद्धा है आप देते हो, इसीलिए कि जो पहला फल है वो ईश्वर का, ईश्वर को सौंपना। अब ईश्वर तो कोई आकर आपकी चीजें खाएगा नहीं, उसके नाम पर आप किसी को देते हो। ये जो भाव है इसी को कहते हैं नवशश्येष्टि। इसी का जो ऑटम सीजन का जो हार्वेस्टिंग है वो दीपावली था, और जो मार्च में जो होता है वसंत में वो आप होली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यही दीपावली धीरे 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 मॉडिफाइड होते हुए हम इस रूप में आज देखते हैं। तो ईश्वर को थैंक्स करने का यह नाम है जो किसान खेती करता है और वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए करता है। धीरे धीरे यज्ञ के साथ साथ घर को जगमगाने के लिए दिया भी आने लगे, लोग सेलिब्रेट करने लगे दिया जला के। आपको पता है अब ये जो अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाता है, अश्विन कार्तिक मास अंग्रेज हिंदुस्तानी इंडियन तिथि के अनुसार, ठंड भी थोड़ा शुरू होता है, रात भी बड़ी होने लगती है, रात थोड़ी अंधेरी भी ज्यादा होने लगती है, तो हम दिया जला के अंधेरे को दूर करते हैं। न केवल हार्वेस्ट के साथ अपने पेट को भरते हैं, उस दिए की रोशनी से ये समझ लेते हैं कि लाइफ में प्रकाश की और भी सोर्सेस हैं, ज्ञान उसको भी हम बढ़ाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे हजार आप जिस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं या आप जिस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, आपको ये प्राउड होना चाहिए कि दुनिया में शायद ये आज के तारीख में अकेला लिविंग सिविलाइजेशन है जो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना। और भी पुराने सिविलाइजेशन रहे पर उनको सब नष्ट कर दिया गया, ग्रीक है, रोमन है, मेसोपोटामिया है, मिस्र है, नष्ट हो गया। पर आप उस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं जो मिलेनियम सब टाइम का पुराना है, हजार हजार साल पुराना है। तो जब आप एक हजार हजार साल पुराने ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, नेचुरली समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलता है, जो चेंज है इट्स पार्ट ऑफ नेचर है, बदलता है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी शास्त्र ज्ञान का कम हुआ, बाकी चीजें बदलने लगे, यज्ञ की जगह पर फिर हमने मोमबत्ती जला, अगरबत्ती जलाना शुरू किया, अब अगरबत्ती के जगह मोमबत्ती जलाना, कैंडल जलाना शुरू कर दिया, अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल बल्ब्स भी जलाते हैं। सो ऑल दीज आर द changes coming natural in the society. खाली इतना नहीं, क्योंकि इतने हजार सालों का एक tradition है, तो कोई भी festival होता है हमारे यहां, शुरू में एक प्रभ किसी particular objective के साथ शुरू होता है, बाद में फिर उसमें नए नए narrations जुड़ जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े पुराने history में बहुत सारी नई और चीजें घटती रहती हैं। जैसे जो दिवाली आप सेलिब्रेट करते हैं, जैन लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, पहले दिवाली के रूप में, बाद में उनके जो तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी महावीर जी, उनका निर्वाण और मुख्य दिन था, तो उस नाते जैनों में दिवाली के साथ महावीर जी का निर्वाण भी जुड़ गया। कुछ पौराणिक माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी जुड़ते जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में दिवाली के पहले दिन नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट करते हैं। नरक चतुर्दशी क्या है? पुराणों में कथा आती है महाभारत में कि कृष्ण ने एक नरकासुर नामक राक्षस था, बड़ा डेविल किंग, उसने 16,000 कितने सारे राजाओं को मार के, उनकी लड़कियों को, उनके जो राज्य की जो लड़कियां है, करीब करीब 16,000 लड़कियों को उसने अपने जेल में डाला था। ऐसे हजारों ऋषि मुनियों को भी उसने बांध के सताता था। तो कृष्ण ने उसी दिन उसको नरकासुर को वध करके उस 16,000 जो प्रिंसेस है उनको छुड़ाया, ऋषि मुनियों को छुड़ाया। सो ये जो एक स्टोरी है, उस स्टोरी के बेस्ट पर नरक चतुर्दशी के रूप में दक्षिण भारत में सेलिब्रेट करते हैं। एक और सेलिब्रेशन और एक नरेशन जो काफी आजकल बहुत पॉपुलर है, वह कि श्री राम रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस आए उसी दिन, और अयोध्या वासियों ने स्वागत में दिया जला के उनका वेलकम किया। अल्दो हिस्टोरिकली फैक्चुअली राम का अयोध्या में वापस आना चैत्र मास में, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, जो रामायण की ऑथोरिटी है, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम जब अयोध्या रिटर्न करते हैं रावण को मार के, वो चैत्र में, मतलब मार्च और अप्रैल में होता है, जहां जब आप रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं उसी के 5-7 दिन आगे पीछे। रामनवमी तो राम का जन्म जयंती है, मतलब बर्थडे है, पर उसके आसपास है, पर समहाउ तो स्टोरीज बदलते रहते हैं और दिवाली के साथ जुड़ते जाते हैं। इसी तरह और एक इंसिडेंट इसी दिवाली के साथ भी जुड़ा, खास करके आर्य समाज के कॉन्टेक्स्ट में, महर्षि दयानंद जिनकी चर्चा थोड़ी आज करेंगे, को भी इसी दिवाली के दिन ही उनकी मृत्यु हुई। किसी ने उनको जहर पिलाया, मारने की कोशिश की, और बहुत दिन तक सफरिंग के बाद उनकी मृत्यु दिवाली के दिन हुई। तो आर्य समाज में स्वामी जी के, महर्षि दयानंद जी के निर्वाण डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी क्या काम किया था, जो 18 सेंचुरी में खास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट तब था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, भारत भर में जो हिंदू धर्म के अंदर और उसके इन्फ्लुएंस में, जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह की बुराइयां थी समय के साथ साथ, जैसे कास्ट सिस्टम आज भी है, अछूत, अनटचेबिलिटी, लेडीज को पढ़ने का कोई राइट ना होना, और सैकड़ों और भी अधर्म के नाम पर ये जो एनिमल्स को सैक्रिफाइस करना, बलि देना, से आज भी है बहुत मात्रा में। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं, सोसाइटी में एनलाइटनमेंट आता है, तो बुराइयां कम होती जाती है। तो उस समय स्वामी जी ने अपने धर्म में, अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, नंबर टू केवल रिफॉर्म नहीं, लोगों को अपने शास्त्रों के बारे में एजुकेट करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया आर्य समाज। और जब धर्म के नाम पर लोग मिथ को ज्यादा बिलीव करने लगे इंस्टेड ऑफ रियलिटी, जैसे दिवाली की बात अभी कर रहे हैं, तो दिवाली की रियलिटी नवशेषष्टी से लेकर और सैकड़ों रीजन है क्यों दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, पर किसी भी हिंदू को पूछो वो रियलिटी को छोड़कर बाकी सब जानता है। हम जब इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन रियलिटी मिथ बेस्ड हो गए, तो उन्हीं मिथ को दूर करने के लिए स्वामी जी ने कि आप अपनी रियलिटी को समझो, अपनी ओरिजिनल चीजों को समझो, अपने शास्त्रों को समझो और उसके हिसाब से अपने धर्म का पालन करो, और उसकी मिथ के बेस होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सोसाइटी में आए, खास करके महर्षि दयानंद जी ने जिन चीजों को एड्रेस किया, एड्रेस मतलब उसकी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश की, उनमें से छोटे बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी, आज भी बहुत सारे जगह पर खास करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में छोटे बच्चों को 8, 9, 10 साल के बच्चों को शादी कर दी जाती है लड़के लड़कियों की, बाद में परेशानी होती है। तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट चलाया, पॉलीगेमी, एक से अधिक पत्नियां रखना, कास्ट के नाम पर लोगों को टॉर्चर करना, उनको सफरिंग के लिए मजबूर करना, स्क्रिप्चर के बारे में टोटल इग्नोरेंस। हम एक ऐसे धर्म को बिलंग करते हैं जहां दुनिया के सबसे लॉजिकल, रैशनल, यूनिवर्सल ज्ञान देने वाले शास्त्रों की भरमार है, वेद, उपनिषद, दर्शन, हजारों शास्त्र हैं, पर सबको छोड़ करें, किसी को पूछो किसी को पता ही नहीं शास्त्रों का नाम, किसी भी नॉर्मल हिंदू को पूछो शुरू करेगा महाभारत, रामायण, पुराण, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा गीता तो बड़े मुश्किल से भी जाएंगे। अब ये सारे पुराण माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, महाभारत रामायण हिस्टोरिकल है, शास्त्र किसी पता ही नहीं है। सो कम बैक टू, इसीलिए स्वामी जी का स्लोगन था गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स वेदाज। और उसके कारण अनएजुकेशन, इलिटरेसी और पॉवर्टी, सुपरस्टिशन की भरमार, इन सब एविल्स को ध्यान में रखकर स्वामी जी ने मूवमेंट चलाया, एक साधु होकर भी, एक ब्राह्मण होकर भी, एक सन्यासी होकर भी, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होने पर भी, एक बहुत बड़े फिलोसोफर होने पर भी, ग्रास रूट में पब्लिक के लिए काम किया, दोनों काम, नॉलेज के लेवल पर शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, शास्त्रों की रचना करना, ज्ञानी लोगों को ट्रेंड करना, और ग्रास रूट पर लोगों के अंदर प्रवचन के द्वारा, दूसरे चीजों के द्वारा मोटिवेट करके लोगों के लाइफ को चेंज करने का काम किया। और जिसका जिसकी उत्तरदायित्व, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आर्य समाज को दिया गया। So he was totally against the dogmas and symbolism that run contrary to common sense. शास्त्रों में चार चीजें बताई जाती है, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो चार चीजों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं मान रहा हूं वो गलत है या सही है। कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। महर्षि दयानंद उन्हीं चीजों को अपनी भाषा में बताते हैं। वेद सबसे बड़ा प्रमाण है, वेद आदि शास्त्र। अगर आपको वेद आदि शास्त्रों को पता नहीं या आपको कुछ मिलता नहीं है, तो फिर जो बड़े महात्मा है, ऋषि मुनि लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनकी लाइफ से भी सीखो, उनकी जो बायोग्राफी से, उनकी लाइफ से भी आप जहां कंफ्यूजन हो, डिलेमा में हो, क्लियर कर सकते हो या पूछ सकते हो। जैसे अर्जुन के समय कृष्ण जैसा महात्मा थे, अर्जुन को डिलेमा हुई, लड़ाई के मैदान में खड़ा था, पर उसको वो जो प्रिविलेंट सोशियल कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर, उसके कारण उनको गिल्टी फीलिंग थी, मैं मारूं ना मारूं, मारना तो पाप होता है वगैरह वगैरह। लड़ाई के मैदान में सोल्जर खड़ा होकर सोचने लगे कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, तो उसने पूछा, तो जो उनका ज्ञान मिला उसके कारण वो लड़ा।
अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं जो मान रहा हूं कर रहा हूं वो सही है गलत है, तो शास्त्र कहते हैं स्वस्य च प्रियमात्मना, तुम्हारे अपना जो कॉमन सेंस है, तुम्हारा जो इनर सेंस है उसकी सुनो। जो 24 घंटे तुम्हें तुम्हारे अंदर वो अलर्टनेस लाता है, जब भी तुम अच्छा करते हो वो अंदर से तुम्हें फील होता है आई एम डूइंग गुड, जब भी तुम बुरा करते हो यू फील आई एम डूइंग रॉन्ग, जब भी तुम किसी सुपरस्टिशियन का काम करते हो, सुपरस्टिशियस काम करते हो, अंदर से तुम्हें ये आता है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी तुम कोई सेंस वाला काम करते हो यू फील गुड। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कितना भी इग्नोरेंट हो, तुम्हारा अपना इनर सेंस भी तुम्हें लाइट दिखाता है। दीपावली में तो लाइट की बात होती है ना, उसको सुनो। और जो तुम्हारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाए डोंट डू इट। और लॉजिकली स्वामी जी इसीलिए लोगों को सिखाते थे थॉट इंडिपेंडेंटली। आप कहेंगे ये बड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर यकीन मानिए आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स हजारों सालों से इंडिपेंडेंटली खुद सोचा और दूसरों को प्रेरित किया। अगर कभी आपको मौका मिले हिंदू शास्त्रों को पढ़ने का, आप देखेंगे कैसे गुरु और शिष्यों के बीच में डिबेट्स हुआ करते थे, जहां जरूरत पड़ी गुरु वहां हारते भी थे। एक प्रसिद्ध घटना है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु। हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी में से एक है मीमांसा दर्शन, उसमें एक बहुत बड़े विद्वान हुए कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य के कंटेम्पररी थे, उनका शिष्य डिसाइपल थे प्रभाकर, बाद में वो प्रभाकर गुरु के नाम से जाने जाते थे। तो क्लास में या नॉर्मल डिस्कशन में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर की बहुत सारे टॉपिक पर उनके दोनों के डिसएग्रीमेंट होते थे और दोनों डिबेट करते थे, आर्ग्यू करते थे। मोस्ट ऑफ टाइम प्रभाकर जीतते थे जो उनके शिष्य है। कुमारिल भट्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मेरा शिष्य मुझे हराता है, उल्टा उन्होंने ये पब्लिक में एक्सेप्ट किया, इसको पढ़ाया तो मैंने था पर ये मेरा गुरु है। और हमेशा वो अपने शिष्य को गुरु कह के बुलाते थे, प्रभाकर गुरु। ये ट्रेडिशन रहा है हिंदू धर्म में डिबेटिंग की, क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चन आंसर की, क्यूरियोसिटी की। जब वो सब खत्म हो गया, हमसे बिलीव और फेथ सिस्टम पर आने लगे, तो फिर हमारे अंदर वो सब चीजें आने लगा जो इलॉजिकल है, इरेशनल है, स्क्रिप्चर बेस्ड नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे आपको क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग। या तो शास्त्रों को पढ़ो या लोगों से जानने की कोशिश करो। ही ऑल्सो एडवोकेटेड द इक्वल राइट्स एंड रेस्पेक्ट टू वोमेन एंड एडवोकेटेड द एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड लाइक द मेल्स। आपको पता है कि नहीं, नॉर्थ इंडिया में पहला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल वो आर्य समाज ने लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में खोला, और उसके बाद मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में सैकड़ों लड़कियों के, केवल लड़कियों के स्कूल खोले आर्य समाज के द्वारा, जिसका नाम डीएवी स्कूल के नाम से जाना जाता था, दयानंद आंग्लो वैदिक। मतलब बच्चे वैदिक ज्ञान भी ले, इंडियन नॉलेज भी ले, और पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो आंग्लो ज्ञान भी उनको मिले, इंग्लिश का भी ज्ञान वेस्टर्न नॉलेज में मिले, जिससे कि वो नॉर्मल सोसाइटी में भी सर्वाइव करे और अपने जो एंसेस्टर्स के ज्ञान है उसके साथ भी वो चले। और स्वामी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुलाम भारत के खिलाफ आंदोलन की बीज बोया, स्वराज्य की जो कंसेप्ट है, स्वराज्य समझते हैं, सेल्फ रूल। स्वामी जी बार बार लिखते हैं अपने सत्यार्थ प्रकाश में और जगह, विदेशी कितने भी अच्छे हो, अपना राज्य तो अपना ही होता है। कोई फॉरेनर कितना भी अच्छा हो, उसका रूल कितना भी अच्छा हो, अपने द्वारा खुद का शासन होने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो स्वराज्य का अधिकार, जिसको बाद में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया और काफी काफी पब्लिसाइज किया, पब्लिक तक लिया, स्वामी दयानंद जी ने पब्लिक को दिया। स्वदेशी का जो मूवमेंट बाद में महात्मा गांधी ने उसको पूरे दुनिया भारत भर में प्रचार किया कि इंडिजिनियस, आप अपनी चीजों पर प्राउड फील करो, अपनी चीजों को करो, अपनी चीजों से जियो, अपने बनाए हुए कपड़े पहनो, अपने बनाए हुए चीजों को यूज करो, विदेशी कितने भी अच्छे लगे उनसे दूर रहो। तो ये जो नेशनल मूवमेंट भी, इसीलिए आप देखेंगे शुरुआती दौर में, आर्य समाज की शुरुआती दौर में, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, प्री गांधी टाइम पर जित मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे सैकड़ों संख्या में आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, रिवोल्यूशनरी हुए, इंडिपेंडेंट फाइटर रहे, वो आर्य समाज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जैसे लाला लाजपत राय, हंसराज, श्याम कृष्ण वर्मा, अनेक नामों के आपको पता चलेगा। और महर्षि दयानंद जी ने का जो सबसे बड़ा वो स्लोगन वो देते थे, क्योंकि हमारे देश में इलिटरेसी बहुत मात्रा में थी और अभी भी है, और जो पढ़ा लिखे लोग हैं वो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं, मतलब वेस्ट में नहीं पढ़े, वो भारत के स्कूलों में भी जो पढ़ाया जाता था वो भी ब्रिटिश करिकुलम के हिसाब से, आज भी हमारे बहुत सारे माइंडसेट ऐसा ही है। तो इसीलिए उनको वो बोलते थे, ये जो तुम पढ़ते हो इनको सुनो, योर एंसेस्टर्स आर नॉट अनसिविलाइज्ड मैन लिविंग इन फॉरेस्ट, दे आर ग्रेट मैन हु एनलाइटन दिस वर्ल्ड। इसकी चर्चा करने का आज टाइम नहीं है कि आपके एंसेस्टर कितने महान थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, जियोलॉजी किस किस फील्ड में आगे बढ़े। तुम उन पर प्राउड करना सीखो, तुम्हारे वैदिक स्क्रिप्चर जैसा कि वेस्टर्न तुम्हें, वेस्टर्न स्कॉलर तुम्हें बताते हैं ये ग्वालों के गाने हैं, क्योंकि उनके उनके स्क्रिप्चर शेफर्ड्स ने बनाया, तो तुम्हारे स्क्रिप्चर भी कोई काउहर्ड ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है। वो उन ज्ञानी विद्वान ऋषियों के द्वारा बनाया गया ग्रंथ है, और उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके तुम्हारे महापुरुष भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसा महावीर महायोद्धा बने। इसलिए अपने चीजों पर प्राउड करना सीखो, अपने पास्ट पर, अपने कल्चर पर। क्योंकि स्वामी जी बड़े फियरलेस सन्यासी थे, निडर थे, सोसाइटी में चलने वाले जो फ्लो ऑफ रिवर है उसके अगेंस्ट जाने को उनमें हिम्मत था। नेचुरली उनके शत्रु भी बहुत बने, बहुत बार उनको मारने की कोशिश की गई, 18 बार तो उनको जहर पिलाने की कोशिश की गई, बहुत बार पिलाए भी गए, अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की गई। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके रसोइयों को लालच, पैसा दे करके, रिश्वत दे करके उनके रसोइया के थ्रू खाने में जहर और वो ग्लास का पाउडर मिला के उनको खिलाया, दूध में पिलाया गया, और उसके लिए उनको अनेक दिन तक सफर करना पड़ा। बाद में दिवाली के दिन शाम को जब पूरे भारत में लोगों के घर में दिए जल रहे थे, तब स्वामी जी का दीप बुझ गया। पर इस बात से आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक जरूर आपको बताना चाहते हैं, स्वामी जी को जब पता चला कि इनकी रसोइये ने ही उनको जहर पिलाया पैसा लेके शत्रुओं से, तो उसने रसोइयों को बोला, वो नेपाल का एक ब्राह्मण था जगन्नाथ उसका नाम था, कि तुमने मुझे जहर मिलाया। तो वो बेचारा घबराया, परेशान हुआ कि एक साधु सन्यासी को मैंने पैसे के लालच में पिलाया, उसने माना। आपको पता है स्वामी जी ने उसे क्या कहा, बोला देखो तुम मुझे ये बात पहले बता देते, अब सारे सैनिक, राजा के सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उस समय राजस्थान में अजमेर में उनका देहांत हुआ, उदयपुर के राजा उनके बड़े मानते थे, सैनिक ढूंढ रहे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम ऐसा करो शाम को अंधेरे में तुम भाग जाओ, नेपाल पहुंच जाओ, और तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं होगा, मेरे थैले में जितने भी पैसा है सब पैसा ले जाओ, और रात को भाग जाओ, नेपाल पहुंच जाओ, तुम्हें कोई मार ना सके। ये उस महात्मा का था, अपने हत्यारे को भी के प्रति जिनका दया भाव था। आज दिवाली में दीपावली के अवसर पर हम महर्षि जी के उन्हीं के आत्मा के लिए हम प्रणाम करते हैं। देवियों सज्जनों, दीपावली सिर्फ बाहर की लाइट जलाने के लिए नहीं, ये एक बड़ा स्पिरिचुअल पर्व भी है। अपने अंदर की लाइट को भी प्रकाशित आप कर सकते हैं, जैसे छोटे से दिया जला करके घने अंधेरे के बीच में आप एक रोशनी लाते हैं कुछ देखने के लिए, इसी तरह अगर हम अपने मन में थोड़ी सफाई ला सकें। दीपावली में आप करते क्या है, दिया खाली नहीं जलाते हैं। भारत में क्या करते हैं, साल भर की पूरी घर की सफाई करते हैं, कूड़ा करकट निकालते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर शाम को वो दिया जलाते हैं। इसी तरह ये एक इंटरनल दीपावली दीपावली भी चलती रहती है। काफी कूड़े करकट हमारे मन में है, इन इम्प्यूरिटीज को, शुद्ध अशुद्धता को मन में हटाएं, हटा करके अगर हटा सके तो अंदर की दिया को अगर जला सके तो हम अपने आप को भी देख पाएंगे, अपनी रियलिटी को भी फील कर पाएंगे। और जिस दिन आप इस रियलिटी को फील करते हो तो फिर आपको, जैसे बाहरी दिया जला करके आप मिठाई खाते हो और दूसरों को खिलाते हो, जिस दिन आपके अंदर अंदर की दिया जले तो आपको भी मिठाई मिलेगी, वो आनंद की, परमानंद की, जॉय की मिठाई मिलेगी। और जिस दिन आप आनंद से भर गए आप दूसरों को भी आनंद बांट सकते हैं। बेचारा दुखी आदमी दूसरों को क्या बांटेगा, दुख ही बांटेगा। सुखी आदमी सुख बांटेगा, धनी आदमी धन बांट सकता है, ज्ञानी आदमी ज्ञान बांट सकता है। इसी तरह जो आनंद से भरा हुआ आदमी वही दूसरों को ज्ञान बांट सकता है। इसलिए हमारे यहाँ साधु संन्यासियों को सम्मान करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आनंद को जानते हैं, अंदर की लाइट को जला रखा है, अंदर की स्वीट को वो खाते होंगे तो कुछ हमें भी वो दे सकते हैं। ये वेद का खूबसूरत मंत्र है जो संध्या के समय, संध्या के मंत्र में हम पढ़ते हैं, उद्वयन्तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। ये दीपावली की जो वैदिक कंसेप्ट देखिए, बिहोल्डिंग द अपराइजिंग डिवाइन लाइट बियॉन्ड द मुंडन डार्कनेस वी अप्रोच द स्पिरिचुअल लाइट विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ये जो सांसारिक मैटेरियल वर्ल्ड की चकाचौंध में हम जो ओरिजिनल डिवाइन लाइट को देख नहीं पाते, जो कि अपराइजिंग है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, हमारे अंदर है, ऋषि कहता है कि मैं उस डिवाइन लाइट को देख सकता, देख रहा हूं जो कि इस अंधेरे के बियॉन्ड है, और देखने के बाद मेरे अंदर भी वो प्रकाश छा जाता है। इसीलिए देवियों सज्जनों, इस दीपावली के पावन पर्व पर हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। ये एक अंग्रेजी का, अंग्रेजी में बनाया हुआ दीपावली के लिए प्रार्थना, किसी ने लिखी, मेरी नहीं, कहीं से हमने ली है। मैन वेक अप फ्रॉम द स्लंबर ऑफ इग्नोरेंस, रियलाइज द कॉन्स्टेंट एंड इटर्नल लाइट ऑफ द सोल, लाइट द लैंप ऑफ लव इन योर हार्ट इन दिस दीपावली, द लैंप ऑफ अबेंडेंस इन योर होम डेफिनेटली, बट द लैंप ऑफ कंपैशन टू सर्व अदर्स ऑल्सो, द लैंप ऑफ नॉलेज टू डिस्पेल इग्नोरेंस, एंड द लैंप ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द अबेंडेंस that the divine has bestowed on us. So at the end, may you all attain full inner illumination. May the supreme light enlighten your understanding. May you all attain the limitless spiritual wealth of the self. And may you all prosper gloriously on the material as well as the spiritual planes. Ye prasiddha prarthana milkar gayenge sab haath jodke. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू वेरी मच। आप सबको दोबारा दीपावली की बहुत-बहुत अभिनंदन। आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी थोड़ा बहुत दिया जरूर जलाइएगा, ये जरूर निवेदन है। ओम शांति शांति।